कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी आराधना। दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी आराधना। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रसता। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं और बाइबल में से शमूएल नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय और 12 अध्याय को आज हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसराइल ने राजा मांगा और परमेश्वर ने उन्हें इसराइल का सबसे अधिक आकर्षक मनुष्य, जो लंबा और चौड़ा आकृति का राजा था, प्रदान किया। परंतु वह परमेश्वर के मन का मनुष्य नहीं था। वे वास्तव में राजा नहीं मांग रहे थे, वे परमेश्वर की प्रभुता से इनकार कर रहे थे। परमेश्वर ने इसराइल को राजा तो दिया, परंतु अपना प्रवक्ता भविष्यवक्ताओं को ही रखा। शमूएल ने शाऊल का राज्याभिषेक करके उसे राजा नियुक्त किया। मित्रों, मैंने पिछले अध्ययन में शाऊल के लिए कठोर शब्दों का उपयोग किया था, परंतु उस समय मेरे पास अपनी बातों का ठोस आधार नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु मुझे संदेह था कि वह सच्चा नहीं है। मेरे विचार में वह राजा की अपेक्षा एक अच्छा अभिनेता बन सकता था, यद्यपि उसने आरंभ अच्छा किया था, परंतु इसका अंत भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें। पहला शमूएल के पुस्तक 11 अध्याय 1 से 3 पद, यहाँ पर लिखा है, तब अमोनी नहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अमोनी नहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिने आंखें फोड़कर इसे सारे इसराइल की नाम धराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इसराइल के सारे देश में दूत भेजेंगे और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नहाश की यह शर्त बहुत ही हीन थी। याबेश के निवासियों को मुक्ति की आवश्यकता थी और इन्हें कोई न कोई शर्त मानना ही पड़ता। हम आगे देखते हैं पहला शमूएल 11 अध्याय उसके 4 से 7 पद में, दूतों ने शाऊल वाले गीबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इसराइल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शाऊल किस प्रकार अपने को शमूएल से जोड़ता है। मेरे विचार में यदि शाऊल केवल अपना ही नाम लेता तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। शमूएल के साथ अपना नाम जोड़ते ही इसराइली निकल आए। उनके निकल आने के 2 मुख्य कारण और भी थे। वे शाऊल से डरते थे और अमोनियों के बारे सोचकर उनका कलेजा कांप उठा था। पहला शमूएल 11 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अमोनियों को मारा और घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहां तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। मेरे मित्रों, शाऊल ने अपने लोगों को 3 दलों में बांटा और इसराइलियों ने अमोनियों का ऐसा संहार किया कि वे 2 मनुष्य साथ न रहे। प्रत्येक अमोनी अपनी जान बचाकर भागा। हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 11 अध्याय के 12 पद में, तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। अब ध्यान दीजिए, कुछ इसराइली शाऊल के राजा बनने के विपक्ष में थे। शमूएल ने उनको अनदेखा किया जब तक कि राष्ट्र शाऊल के पक्ष में एकमत नहीं हो गया। अमोनियों को पराजित करके शाऊल ने इस विरोध पर भी जय प्राप्त की। पहला शमूएल 11 अध्याय उसके 13 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा क्योंकि आज यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इसराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए और वहीं शाऊल और सब इसराइली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अब संपूर्ण इसराइल ने शाऊल को राजा स्वीकार कर लिया। अब आप निश्चय ही कहेंगे, प्रचारक साहब देखिए आप गलत ही थे, आप राजा शाऊल के साथ पक्षपात कर रहे थे, उसने तो अंततः अच्छा ही किया है। जी हाँ, निस्संदेह उसने एक महान राजा के समान आरंभ किया, परंतु आगे पढ़ते रहिए कि यह बहुत बुरा है कि उसकी कहानी का यह अंत नहीं है। मित्रों, अब हम आगे आते हैं और देखेंगे अध्याय 12 में शमूएल के विलाप गीत से आरंभ होना अर्थात अधिकार का स्थानांतरण शमूएल से साउल को। आइए हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। तब शमूएल ने सारे इसराइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह शमूएल का विलाप गीत है। उसका अंतिम संदेश, वह एक असाधारण व्यक्ति था जिसका उत्तराधिकार शाऊल ने संभाला है। यद्यपि इसराइल ने परमेश्वर की अपेक्षा राजा को चुना, वह उन्हें अब भी आशीषें देगा यदि वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे अर्थात आज्ञा मानेंगे। यह प्रकट है कि शाऊल राजा था और परमेश्वर उसे प्रत्येक अवसर प्रदान करेगा। पहला शमूएल 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल उजले हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। शमूएल मिलाप वाले तंबू में पला और बड़ा हुआ। वह एक प्रकार से मछली के पात्र में था। वह सदैव सबकी आंखों के सामने था। शायद ऐसा कोई नहीं था जिसका जीवन शमूएल की नाय आम जनता की दृष्टि में था। मेरे मित्रों, हमारे युग में तो यदि कोई मनुष्य जनता के सामने आ जाए तो जनता उसे स्वीकार कर लेती है, परंतु जब उसके अतीत का एक भी काला धब्बा पता चलता है तो वह नायक धाराशाही हो जाता है। शमूएल के साथ ऐसा नहीं था। वह बाल्यकाल में ही मिलाप वाले तंबू में उसकी माता द्वारा अर्पित कर दिया गया था। उसका संपूर्ण जीवन जनता के सामने था। तब उसने एक स्नेही पिता का एक दुखद भाव व्यक्त किया, मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं। दूसरे शब्दों में, तुम उन्हें ग्रहण क्यों नहीं करते? शमूएल ने तो उन्हें पद देना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, मैं उपस्थित हूँ इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया व किसका गधा ले लिया व किस पर अंधेर किया व किसको पीसा व किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, एक ऐसा मनुष्य जो वर्षों सबकी दृष्टि में रहा हो और उनका न्याय भी रहा हो, उसके लिए यह कहना एक महान बात है। उसके पास धनवान होने के अनेक अवसर थे, परंतु वह परीक्षा में नहीं पड़ा। शमूएल परमेश्वर के वचन में एक विशिष्ट जन है, परंतु पिता रूप में वह विफल था। अनेक गणमान्य लोग ऐसे ही होते हैं। अनेक विख्यात विश्वासी की संतान विफलता के पुतले रहे हैं। मेरे मित्रों, यह समझना कठिन है, परंतु मानव परिवार शताब्दियों और सहस्त्रवादियों से इसी मार्ग पर है। शमूएल ने कहा कि यदि उसने किसी की कैसी भी हानि की हो तो वह उन्हें फेर देने को तैयार था। यह समय था कि कोई कहे कि शमूएल ने उसके साथ अन्याय किया, परंतु कोई भी नहीं था। हम पहला शमूएल 12 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। मेरे मित्रों, शमूएल का जीवन जनता के सामने था। जनता उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकती थी और वह वास्तव में परमेश्वर का भक्त जन था। शमूएल अब इसराइल का इतिहास दोहराता है। परमेश्वर द्वारा महान बनाए अनेक जनों ने यही विधि अपनाई थी। मूसा ने यही किया था, यहोशू ने भी यही किया, गिदोन ने भी यही किया और अब शमूएल भी वही कर रहा था। नए नियम में जब स्तेफनुस को महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब उसने भी इसराइल का इतिहास दोहराया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल परमेश्वर की प्रजा को जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता और दया का स्मरण दिला रहा था। जब उनका ईश्वर त्याग उन्हें दासत्व में ले गया और उन्होंने कष्टों में परमेश्वर को पुकारा तब उसने बड़े अनुग्रह से उनकी पुकार सुनी और उनके लिए मुक्तिदाता भी भेजा। उसने मिस्पा में भी ऐसा ही किया, यहाँ तक कि यहोवा ने हमारी सहायता की। तब वह उनकी वर्तमान स्थिति एवं अवस्था पर आया। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 13 पद। लिखा है, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल स्पष्ट करता है कि शाऊल उनकी पसंद का राजा था। अनेकों का यह मानना है कि बहुमत की आवाज, मनुष्य का चुनाव परमेश्वर की आवाज है। बाइबल इस विचार के विपरीत है। यहाँ अल्पसंख्या ही परमेश्वर की इच्छा को जानने के निकट होती है। उन्हें शाऊल चाहिए था, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। जब परमेश्वर चुनाव करता है तो कैसा अंतर होता है, आइए हम देखें पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 14 पद। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। मेरे मित्रों, शाऊल परमेश्वर की प्रजा की पसंद था, इसलिए परमेश्वर ने उसका त्याग नहीं किया। परमेश्वर उसे अनेक अवसर प्रदान करता है ताकि वह परमेश्वर की ओर फिरे। हम पहला शमूएल 12 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल उन्हें यथावत समझा रहा था कि यदि वे परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और यदि वे उसकी सेवा नहीं करेंगे तो दंड पाएंगे। अब परमेश्वर बड़े नाटकीय और चमत्कारी रूप से प्रकट होगा। आइए हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 16 से 18 पद को पढ़ें। लिखा है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने आंधी और वर्षा बुलाई थी, परंतु शमूएल ने उससे पहले ऐसा किया था। और मेरे विचार में शमूएल के जीवन पर यह परमेश्वर की छाप थी। गर्जन और वर्षा परमेश्वर का प्रवक्ता होने के शमूएल के जीवन के लिए परमेश्वर का आमीन था। पहला शमूएल 12 अध्याय के 19 पद में लिखा है, और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। मेरे मित्रों, राजा मांगकर इसराइल ने पाप किया था। अन्य जातियों की नाई राजा मांगकर उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया था। वे चाहते थे कि उनके लिए एक राजा हो जो उन पर शासन करे और उनका न्याय करे, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता था। हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 20 पद में। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। यहाँ पर फिर से देखिए, मेरे प्रिय मित्रों, अतीत के पाप और भूल आपके जीवन को नाश ना करे। आप क्या हैं या आपने क्या किया है? यदि आप प्रभु के पास उद्धार और क्षमा हेतु आएंगे तो प्रभु आपको स्वीकार करेगा और बहुत आशीष देगा। अपने अतीत को अपने भविष्य के चलते नष्ट करने ना दें और न ही अपना वर्तमान उजाड़ने दें। मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर के पास आने के लिए कदम उठाएं। आप चाहे जैसा भी पाप क्यों न किए हो सकता है कि आपके माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। आज आपके लिए मौका है कि आप अपने भविष्य को नष्ट मत करें। परमेश्वर के पास आए, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें और उससे क्षमा मांगे और निश्चय जाने कि आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और परमेश्वर आपको भविष्य में आशीषों से परिपूर्ण करेगा। हम पहला शमूएल 12 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर को थामे रहें, उन ठग व्यापारियों से भी अलग रहें। आज कलीसिया विभिन्न विधियों के प्रयोग में लगी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कलीसिया को बोध नहीं है कि केवल परमेश्वर ही आशीषों का दाता है। हमें परमेश्वर और उसके वचन को थामे रहना है। मेरे विचार में तो बाइबल को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसे आवश्यकता है तो प्रचार की, व्याख्या की। हमें प्रश्नों से अधिक उद्घोषणा और संबोधन की आवश्यकता है। हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। मेरे मित्रों, यह एक महिमामय पद है। क्या आपने प्रभु का नाम लिया है? क्या वह आपका उद्धार करता है? क्या आप उस पर आश्रित हैं? वह आपको त्यागेगा नहीं। इब्रानियों के पत्री में प्रभु कहता है 13 अध्याय उसके 5 पद में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जी हाँ, हमारे प्रभु कैसे महान है। उसके मन को यह भाया कि हमें अपनी प्रजा बनाए। परमेश्वर ने इसराइल को क्यों चुना? यदि आप उत्तर खोजते हैं तो मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर की ओर निहारें। परमेश्वर यह किया है, बस इतना ही जानना बहुत है। परमेश्वर ने आपको चुना है और संभवतः आपके मित्र सोचते हैं क्यों, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और यही बहुत है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह तो मुझे छोड़कर आगे बढ़ सकता है, परंतु मैं इस सच्चाई में आनंद करता हूं कि उसने ऐसा नहीं किया। यह एक महान संदेश है जो शमूएल इसराइल को सुना रहा है। क्या आप आनंदित नहीं हैं कि आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं? क्या यह एक अद्भुत बात नहीं कि आप और प्रभु एक मित्र के जैसे हैं? क्या यह एक महान बात नहीं है कि वह आपका उद्धार करता है और वह आपका उद्धार करता बन सकता है? वह आपकी ओर है, आपके विरोध में नहीं। वह आपकी सहायता करना चाहता है। मेरे मित्रों, वह एक अद्भुत सहायक और उद्धारक है और वह चरम सीमा तक उद्धार करता है। हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। अपने रेडियो सेवा में मैंने पाया है कि अनेकों के पास परमेश्वर के वरदान हैं। यह प्रार्थना का वरदान है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह परमेश्वर की ओर से है। अनेक जन रोग सया पर हैं, जिनमें से अनेक कभी नहीं उठेंगे। उनकी सेवा प्रार्थना करने की है, मुझे उनकी प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता है। मेरे मित्रों, मैं इस रेडियो सेवकाई से जुड़ा हूं और मुझे अच्छा अवसर प्राप्त है कि आज मैं महान सेवा कर सकता हूं और उसका आनंद ले सकता हूं। उसका कारण है परमेश्वर के भक्त जनों की प्रार्थना। एक बार मेरी भेंट एक अनजान मनुष्य से हुई। उसने कहा, आप जानते हैं मैं आपके लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं तब मेरा मन करता है कि रोते हुए प्रभु के समक्ष घुटने टेक दूं। किसी के लिए प्रार्थना करना एक सौभाग्य है। शमूएल ने कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक के पास प्रार्थना का एक उत्तरदायित्व है। मुझे इस देश में प्रचारकों के एक समूह के लिए प्रार्थना का बोझ है। वे मेरे मित्र भी हैं। मैं उनकी कलीसियाओं में रहा हूं और मुझे उनकी कुछ समस्याओं का बोध भी है। मैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। मुझ पर मेरे परिवार के लिए प्रार्थना का बोझ है। यदि मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं तो कौन करेगा? मेरी रेडियो सेवकाई के लिए प्रार्थना करने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। मेरे मित्रों, आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप प्रार्थना करें। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आज संसार में आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों की कमी नहीं है। प्रभु न करे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना छोड़कर पाप करें। हम पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 24 और 25 पद में पढ़ते हैं, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। मेरे मित्रों, एक बार मैं फुटबॉल के खेल में एक मनुष्य के पास बैठा था। वह अपने पक्ष की टीम को प्रोत्साहित करने में ऐसा जोश प्रकट कर रहा था कि देखने वाला सोचेगा कि उसे दौरे पड़ते हैं। मैंने उसे देखा और सोचा, काश मुझ में परमेश्वर की बातों के प्रति ऐसा जोश होता। मेरे मित्रों, हमें संपूर्ण तन मन से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। शमूएल के इस विलाप गीत में आपके और मेरे लिए यह कैसा महान संदेश है। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा तन मन और धन से करें। हम नहीं जा सकते हैं, किसी की कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, परंतु हम घर में बैठ करके परमेश्वर के भक्तों के लिए, उसकी सेवकाई के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे मित्र, आज ही आप भी निर्णय लीजिए कि प्रभु, आज से मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। और मेरे मित्र, आप निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना के उत्तर में बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे और आपके जीवन में भी आशीषों की बारिश करेंगे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज आपने निर्णय लिया है और आज के वचन के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबके निर्णयों में आपकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। जिंदगी की राहों में साथ है तेरा, जिंदगी की राहों में साथ है तेरा, तेरे बिंद के मुझे घोर अंधेरा। आया है ढंग तू एक सवेरा, आया है ढंग तू एक सवेरा, धन्य है पवित्र है नाम यीशु तेरा। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर।